अध्याय छठा। जब हमने सीमा सुरक्षाकर्मी से इस्तांबुल का मार्ग पूछा तो उसने एक सुनसान रास्ते की ओर संकेत कर दिया। वो रास्ता पूर्वी थ्रेस के पहाड़ी एवं उपजाऊ देहाती इलाके की ओर जा रहा था। चलते चलते मैंने पहली बार एक मस्जिद का बुर्ज देखा। मस्जिद के गुबंद को और शिखरों ने मुझे प्रभावित किया और मैं भगवान का ये घर देखकर रोमांचित हो उठा। सड़क पर कोई यातायात नहीं थी और इस्तांबुल अभी भी 150 मील दूर था। अब क्या करें? खड़े खड़े हम सोच ही रहे थे कि कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे कि एक पुराना ट्रक खड़खड़ाते हुए हमारे पास आकर रुका। हमें ये देखकर अजीब लगा कि उस पर लकड़ी के बेंच रखे थे जिन पर 10-12 परेशान हाल पुलिसकर्मी बैठे थे। हम भी ऊपर चढ़ गए। सभी पुलिसकर्मियों ने फटी पुरानी वर्दी पहन रखी थी। सभी चुप थे सिवाय एक के, जिसने वर्दी नहीं पहनी थी। वो मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे हशीश खरीदना चाहता हूँ, मुझे बेच दो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने उत्तर दिया। उसने बार बार मांग की। बाद में वो ट्रक से उतरा, अपनी पुलिस की टोपी पहनी और शान से चलता बना। मध्यरात्रि हम इस्तांबुल पहुंचे। जब पुलिस अधिकारी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं तो राम से ने उसे बताया कि हम किसी सस्ते स्थान की खोज में हैं। अधिकारी ने अपने ऐनक नीचे कर हमें घूर कर देखा और फिर अकेले में जाकर एक छोटे अफसर से बात की। वापस आकर उसने हमें अपने सहायक पुलिसकर्मी के पीछे जाने के लिए कहा। सहायक कर्मी की वर्दी फटी और बदरंग हो गई थी। उसके हाव भाव उदासीन थे और उसने न तो हमसे कोई बात की और न हमारी ओर देखा। उसके पीछे पीछे हम इस्तांबुल की सुनसान सड़कों पर चलते रहे जहां हर गली के साथ गरीबी बढ़ती जा रही थी। हमें स्पष्ट होने लगा कि वो हमें गंदी बस्तियों के बीचों बीच ऐसे स्थान पर ले जा रहा था जहां हैजा अपने पूरे जोरों पर था। वो दृश्य हतोत्साहित करने वाला था। चारों ओर से हम गरीबी और बीमारी से घिरे हुए थे। जेफ कांपने लगा। हमने बहुत बड़ी गलती की है, वो अवांतर भूमि यहां से कहीं अधिक सुरक्षित थी। रामसे ने भी गहरी सांस ली। दोस्तों, इतने सालों के भ्रमण में मैंने इतनी दुखद जगह पहले कभी नहीं देखी। मैंने प्रार्थना करने का प्रयास किया परंतु मेरा मन चकरा रहा था। ये आदमी हमें कहाँ ले जा रहा था? घबराहट पैदा करते अंधकार में पीड़ा से तड़पते लोगों की कराहटें और चीखें सुनाई पड़ रही थी। इस गंदी बस्ती में हैजे का संक्रामक रोग अपना पूरा प्रकोप दिखा रहा था। मुझे सांस लेने से भी डर लग रहा था। हैजा बड़ी तेजी से आक्रमण करता है और पेट में दर्दनाक मरोड़ों के साथ मृत्यु लेकर आता है। अनजान स्थान पर हम अकेले इस अजनबी व्यक्ति के पीछे जा रहे थे। लौट कर जाते भी तो कहाँ जाते। हम मनहूस दिखती पत्थर की एक इमारत के सामने आकर रुके। एक डरावनी सनसनाहट ने मुझे जकड़ लिया। मेरे भीतर की आवाज़ ने मुझे वहां से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन हमारा पत्थर प्रदर्शक मुस्कुराता हुए हमें अंदर ले गया। हमने एक मध्यम प्रकाश से घिरे एक बिलियर्ड हॉल में प्रवेश किया। अंदर 10-12 व्यक्ति सिगरेट फूंकते हुए जुआ खेल रहे थे। दिखने में वे अपराध जगत के सबसे घटिया बदमाश लग रहे थे। जब उन्होंने अपनी ठंडी निगाहों से हमारी थाह ली, मैं समझ गया कि वे ऐसे ठग हैं जो जुए के उधार के लिए किसी की हत्या करने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। उनका नाटा लेकिन डरावना नेता दीवार का सहारा लिए खड़ा था। उसकी माउस पेशियां उसकी तंग काली टी शर्ट पर उभर रही थी और वो चाकू से अपने नाखूनों का मैल कुरेद रहा था। हमारे गाइडों को देखकर उसने चाकू अपनी जेब में रखा, अपने हाथ को तेल लगे बालों पर फिराया और पास आकर उससे बात करने लगा। दोनों के बीच कुछ समझौता सा हुआ और उन्होंने हमें अपने पीछे पीछे हॉल के अंत तक आने का इशारा किया। वे हमें उबड़ खाबड़ पत्थरों की खड़ी सीढ़ी पर लेकर गए। घुप अंधकार छाया था। सीढ़ी के एक ओर पथरीली दीवार थी और दूसरी ओर केवल तहखाने की गहराई। कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं थी। चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें फूल गई। ऊपर पहुंचकर हम अंधेरे गलियारे से चलकर एक कमरे तक पहुंचने जहां हमें ठहरना था। आदर सत्कार या स्वागत का प्रश्न ही नहीं था, अपितु हमारे मेजबान जिद करने लगे कि हम उन्हें सारा किराया पेशगी में दे दें। उनकी जोर जबरदस्ती इतनी चौंकाने वाली थी कि हमें स्पष्ट होने लगा कि वहां आकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हम खुद एक जाल में आ फंसे हैं? हम सस्ता होटल चाहते थे, न कि मौत का घर। रामसे ने उन्हें बताया कि हमारे पास लीरा नहीं है और उनसे डॉलर का विनिमय मूल्य पूछा, तब हम आपको पैसा देने की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन केवल एक रात के लिए। उन्होंने सरकारी मूल्य से आधा मूल्य बताकर हमें चौंका दिया। रामसे ने आपत्ति उठाई और शांति से सही मूल्य के लिए मोल भाव करने लगा, लेकिन उस ठग को कुछ स्वीकार नहीं था, क्योंकि अब हम उसके चंगुल में थे। चेहरे पर त्योरियां चढ़ाते हुए उसने अपनी अधजली सिगरेट दीवार पर दे मारी और हमारे सामने हवा में चाकू फिराते हुए उत्तेजित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। भले ही वो नाटा था, परंतु उसकी क्रूरता में हमें आतंकित कर दिया। उसकी काली पैनी आंखें क्रोध से जल रही थी। कांपते होठों के साथ पागलों के समान चिल्लाते हुए वो हमारे चेहरों पर अंगुली उठाने लगा। मूर्तिमान क्रोध हमारे सामने उबल रहा था। बाकी ठग भावशून्य हो देख रहे थे। हमारा पुराना दोस्त पुलिस वाला भी भय से सिकुड़कर कांपने लगा था। हमारा कोई सहारा नहीं था। हमारा धन लेकर वे लोग हमें उस कमरे की जेल में छोड़ गए। यदि वे हमें लूटने या मारने के लिए वापस आएंगे तो क्या होगा? हम भागने के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वहां कुछ नहीं था। दरवाजा के अलावा वहां केवल एक ही खिड़की थी, जो नीचे पथरीली गली से बहुत ऊंचाई पर स्थित थी। हम बुरी तरह फंस चुके थे। जेफ, दरवाजा बंद कर दो, राम से फुसफुसाया, और मंक, तुम इस डबल बेड को धक्का मारकर दरवाजे से सटाने में मेरी सहायता करो। इस प्रकार जब हम सो रहे होंगे तो वे गुंडे अंदर नहीं आ पाएंगे। नींद हमसे कोसों दूर थी, लेकिन बुद्धिमानी इसमें थी कि हम अपनी रक्षा करने का यथासंभव प्रयत्न करें। बिना आवाज किए हमने पलंग उठाया और उसे दरवाजे के साथ सटा दिया। फिर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हमने पलंग की स्टील की टेक को रस्सी से दरवाजे की मूठ के साथ बांध दिया। रामसे और जैफ उस पलंग पर लेट गए और मैं दीवार के साथ लगी एक छोटी खटिया पर। कमरे में कूड़ा करकट भरा था। बिजली का एक बल्ब छत से लटक रहा था। दीवार पर हरे रंग की पपड़ियां थी। मकड़ी के जाले हर कोने में थे और एक सड़ी दुर्गंध से हमें मितली आ रही थी। ताजी हवा के लिए बेचैन मैं 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी खिड़की को खोलने के लिए संघर्ष करने लगा। अंततः वो खुल गई और मैं पुनः बिस्तर पर आ लेटा। लेकिन कुछ ही मिनटों में खटमलों ने आक्रमण कर दिया। आराम का तो प्रश्न ही नहीं था। हम तीनों अंधेरे में लेटे लेटे प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद हमें ताले में धीरे से घूमती चाबी की आवाज सुनाई दी। चुपके से दरवाजा खुला और पलंग से टकराया। घुसपैठियों ने पहली धीरे से धक्का दिया, ये न जानते हुए कि हम तीनों जमीन पर उकड़ू बैठकर अपनी सारी शक्ति से पलंग को धकेल रहे थे। फिर उन्होंने और जोर से धक्का मारा। शीघ्र ही वे समझ गए कि हम उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने शरीर से दरवाजे को ठोकने लगे। दरवाजा खुल गया, लेकिन हमने अपने पूरे वजन से धक्का लगाकर उसे फिर से बंद कर दिया। जीवन मृत्यु की इस रस्साकशी में दोनों पक्ष उत्तेजित हो गए। मैं पलंग पर कूदा जिससे दरवाजे की मूठ को फिर से पलंग की टेक से बांध सकूं, लेकिन तभी दरवाजे की दरार से एक आक्रमणकर्ता ने मेरी ओर चाकू से वार किया। मेरा मन चीख पड़ा, वे हमें मारना चाहते हैं। लड़ाई जारी रही। धक्कों की मार से दरवाज़ा बार बार पलंग से टकरा रहा था। हमने प्रबलता से पलंग को दबाए रखा। वे धमकियां और गालियां बक रहे थे, फिर दरवाज़ा खोलने में असफल वे एकाएक रुक गए। भारी सन्नाटा छा गया। अगली घेराबंदी से पहले थोड़ा आराम करने के लिए मैं खटमलों से भरे अपने बिस्तर पर फिर से लेट गया। मेरे मन में अशुभ विचार आने लगे, क्या कर रहा हूं मैं यहां इन गंदी हैजाग्रस्त बस्तियों में। अपराधियों का निशाना बने हुए करवटें बदलते हुए मैं हाईलैंड पार्क के उस जीवन को याद करने लगा जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं एक सीधा साधा लड़का हूं जिसके उसके परिजन और मित्र प्रेम करते हैं, क्यों मैंने ऐसे शांति भरे घर का आश्रय छोड़ा। अब मैं असहाय और अकेला हूं। मैं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकला था, क्या यही वो रास्ता है जिस पर चलकर मुझे समर्पण का ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे मन में एक विचार आया, यदि ऐसा है तो होने दो, इस विकट परिस्थिति से केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। मेरी प्रार्थनाओं का पलंग से टकराते दरवाजे की आवाज़ ने रोक दिया। लड़ाई का दूसरा दौर आरंभ हो चुका था। हमारे संभावित हत्यारे क्रोध से चिल्लाते हुए दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। एक क्षण की असावधानी और हम सारे मारे जाते। बर्फीली ठंडी के बावजूद भी हमारे तन से पसीने की धारा बह रही थी। हम थकान से हांफ रहे थे और हमारे अंग टूट चुके थे, लेकिन हमलावर नहीं थके। उनकी गर्जना हमें आतंकित करने लगी। उसी समय मुझे लगा मानो मेरा मूत्राशय फटने वाला था। एकमात्र शौचालय दरवाजे के बाहर हॉल में था। मेरे भीतर तीन प्रचंड संघर्ष चल रहे थे। एक संघर्ष हत्यारों को बाहर रोके रखने का, दूसरा संघर्ष अपने मूत्र को अंदर रोके रखने का, और तीसरा संघर्ष ये समझने का कि ये सब क्या हो रहा था। और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ मैं जैफ और रामसे को अकेला छोड़कर खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। वहां मैं नीचे गली में अपनी लघुशंका निवारण करने लगा। अचानक एक महिला की चीख ने मेरे कान फाड़ दिए। लगभग 15 फुट चौड़ी गली से उस पार ठीक मेरे सामने एक खिड़की थी जिसमें एक बूढ़ी मुसलमान स्त्री काला बुर्का पहने मुझे देख रही थी। जल्दबाजी में मैं उसे नहीं देख पाया था, किंतु वो मुझे घूर रही थी। मेरी निर्लज्जता देखकर वो भड़क गई और घिन्नता से चिल्लाई, ये तो बहुत हो गया। ठीक उसके सामने अपनी पैंट नीचे किए निस्सहाय होकर मूत्र विसर्जन करते हुए मैं उससे दया की याचना कर रहा था। गालियां देते हुए उसने मेरे चेहरे पर एक जूता फेंका, निशाना अचूक रहा। मैंने खिड़की बंद की, नीचे कूदा और अपनी नाक और मुंह से खून पोंछा, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मेरा मूत्राशय अभी भी फट रहा था। दूसरी ओर राम से चिल्ला रहा था, मंक वापस आओ, हम अकेले इन्हें रोक नहीं सकते। मैं तीनों संघर्ष हार रहा था। मैंने सोचा, मैं नहीं बचूंगा, हे भगवान मेरी सहायता करो। तभी मुझे एक समाधान दिखाई दिया और बचा हुआ काम मैंने उस जूते में पूरा कर दिया। उसे मेज की दराज में रखकर मैं युद्ध में लौट आया। जोर से धकेलते हुए हमने उन्हें रोके रखा। कुछ समय पश्चात पुनः शांति छा गई। हम बिना भोजन और पानी के अंदर फंसे थे। केवल कुछ समय का ही खेल था, वे अंदर घुस सकते थे। तभी भोर का धुंधला प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। हम सहमत हो गए कि अगला हमला होने से पहले दरवाजे से चुपचाप भागकर ही हम अपनी जान बचा सकते हैं। बचकर भाग निकलने की संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन हमने अपने जीवन को दाव पर लगाने का निर्णय किया। हम नहीं जानते थे कि हमारे दरवाजे के बाहर कोई पहरेदार था या नहीं। यदि कोई खड़ा होगा तो निश्चित हम मरने वाले थे, किंतु ये खतरा हमें उठाना ही था। आहिस्ता से हमने दरवाज़ा खोला और गहन अंधकार में चले आए। मुझे अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंजों पर चलते हुए हम जब आगे बढ़े तो लकड़ी का पुराना फर्श हर पग पग चरमरा रहा था। हर चरमराहट एक चीख के समान लग रही थी। इस अंधेरे में क्या हम सीधा उनमें से किसी एक से जा टकराएंगे? मेरे हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे तैसे हम उस पुरानी सीढ़ी तक पहुंचे। अभी भी कुछ देख पाने में असमर्थ हम दीवार को हाथों से टटोल कर आगे बढ़ने लगे, डरते हुए कि कहीं दूसरी ओर तहखाने में न गिर जाएं। हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर हल्के उजाला भरे हॉल में पहुंचे, जहां ये देखकर हम कांप उठे कि एक पहरेदार बिलियर्ड की मेज पर सोया पड़ा था। सांसें रोककर दबे पांव हम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उस पर ताला लगा था, कुंडी हिल भी नहीं रही थी। हमने कभी कभी भी ऐसा ताला नहीं देखा था। हड़बड़ाकर हम सब ने उसे खोलने का प्रयत्न किया। हमारे प्रयत्नों ने पहरेदार की नींद तोड़ दी और उसने चिल्लाकर दूसरों को पुकारा। दूसरी सीढ़ियों से उनकी भगदड़ की दिल दहलाने वाली आवाज आने लगी, हे भगवान, मेरी सांस फूल गई, ताला खोलो जल्दी, राम से जल्दी खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। उसने हर संभव तरीके से ताले को घुमाया, किंतु सब व्यर्थ। उन गुंडों के जूते पटकने की पास आती आवाजों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वे हमें पकड़ने ही वाले थे कि अचानक खट से ताला खुल गया। हम गली में कूदे तथा अपने सारे सामान के साथ सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। पीछे हमें अपने दुश्मनों की चीखें सुनाई दे रही थी। बिना पीछे मुड़े हमने एक टैक्सी में छलांग लगा दी। पूरे इस्तांबुल में हम केवल एक स्थान जानते थे, नीली मस्जिद, नीली मस्जिद। हम तीनों एक स्वर में चिल्लाए, किंतु आईने में पीछे आते गुंडों के गैंगों को देखकर टैक्सी ड्राइवर हिला तक नहीं। उसे एक सुनहरा अवसर दिखाई दिया। $200 उसने मांग की। क्या $200? जेफ चीखा। ड्राइवर और जोर से चिल्लाया, $200, $200। मरते क्या न करते। हम मान गए, हाँ ठीक है, $200, $200। उसने गाड़ी भगाई, किंतु क्या हम सुरक्षित थे? जेफ के पास पर्स था और वो चिंतित था। हम इसे $200 नहीं दे सकते। वो फुसफुस आया, तो किराया नहीं मिलने पर क्या ये हमें मारेंगे? हम ये जानना नहीं चाहते थे। जैसे ही पहली लाल बत्ती आई, हम टैक्सी से निकलकर भागे। ड्राइवर चीखने लगा, $200, $200, किंतु हम जा चुके थे। छठा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है।